दूसरी तरफ उसी सुबह शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़ा और साफ सुथरा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की हल्की भीड़ लगी थी। कोई पर्ची बनवा रहा था, कोई डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसी भीड़ के बीच शकुंतला तेज कदमों से अंदर आई, उसके साथ रम्या। रम्या का चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था, वो बार बार अपने गाल को पकड़ रही थी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, रम्या ने धीरे से कहा। शकुंतला ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बेटा, थोड़ा सा सब्र करो, डॉक्टर अभी ठीक कर देंगे। लेकिन रम्या के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। असल में वो पहली बार दांत के डॉक्टर के पास आई थी। हॉस्पिटल के अंदर की सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की हल्की गंध और लोगों की आवाज़ें उसे और भी घबराहट दे रही थीं। शकुंतला उसे लेकर रिसेप्शन काउंटर के पास गई। जी, दांत के डॉक्टर से दिखाना है, उसने कहा। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने पर्ची बनाते हुए पूछा, नाम? रम्या, शकुंतला ने जवाब दिया। कुछ मिनट बाद पर्ची बन गई। नर्स ने कहा, डॉक्टर निखिल, कमरा नंबर 5, बाहर बैठिए, आपकी बारी आ जाएगी। शकुंतला रम्या को लेकर कमरे की बाहर रखी कुर्सियों पर बैठ गई। वहां पहले से ही कुछ मरीज बैठे थे। किसी का दांत में दर्द था, कोई बच्चे को लेकर आया था, कोई दाढ़ निकलवाने आया था। रम्या धीरे धीरे अपनी माँ से सटकर बैठ गई। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, माँ, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे क्या? शकुंतला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं, बस दांत देखेंगे। लेकिन सच तो ये था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि डॉक्टर क्या करेंगे। रम्या ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। कमरे के अंदर से कभी कभी मशीन की आवाज़ आती थी, ज़्ज़। वो आवाज़ सुनकर रम्या और सिमट जाती। माँ, मुझे डर लग रहा है, उसकी आंखें भर आईं। शकुंतला ने उसे अपने पास खींच लिया। डरने की क्या बात है, मैं यहीं हूं ना? रम्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आदमी अपने गाल पर हाथ रखे बाहर निकला। उसके पीछे से नर्स बोली, अगला मरीज। शकुंतला ने पर्ची देखी, अभी उनकी बारी नहीं थी। दर्द अब बढ़ता जा रहा था, उसने फिर गाल पकड़ लिया। माँ, ऐसा लग रहा है दांत फट जाएगा, शकुंतला का दिल भर आया। वो जानती थी कि रम्या बहुत दर्द में है। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, थोड़ा पानी पी लो। रम्या ने एक घूंट लिया, लेकिन दर्द फिर भी कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खुला, नर्स ने नाम पुकारा, रम्या। शकुंतला तुरंत उठी, चलो बेटा हमारी बारी आ गई। लेकिन रम्या वहीं खड़ी रह गई, उसके चेहरे पर साफ दर्द था। माँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, उसने घबरा कर कहा। शकुंतला ने उसका हाथ पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा, बस डॉक्टर दांत देखेंगे। धीरे धीरे वो उसे लेकर कमरे के अंदर गई। कमरे के अंदर एक बड़ी सी डेंटल चेयर लगी थी, पास में कई तरह के औजार रखे थे, चमकती हुई छोटी छोटी मशीनें। रम्या ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका डर और बढ़ गया। कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, सफ़ेद कोट पहने। वो था डॉक्टर निखिल, लगभग 30 साल का शांत स्वभाव वाला डॉक्टर। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रम्या चुप रही, वो अपनी माँ के पीछे छिप गई। डॉक्टर हल्का सा हंसा, अरे इतनी डर क्यों रही हो? शकुंतला बोली, डॉक्टर साहब, इसके दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर निखिल ने सिर हिलाया, फिर उसने बहुत नरम आवाज में रम्या से कहा, देखो मैं बस दांत देखूंगा, दर्द नहीं करूंगा। रम्या ने धीरे से माँ की तरफ देखा। शकुंतला ने उसे भरोसा दिलाया, बैठ जाओ बेटा। थोड़ी झिझक के बाद रम्या धीरे धीरे उस बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने कुर्सी को थोड़ा पीछे किया, अब मुँह खोलो। रम्या ने डरते डरते मुँह खोला। डॉक्टर ने छोटी सी लाइट जलाकर दांत देखना शुरू किया। कुछ सेकेंड बाद उसने कहा, ओ, ये दांत में इन्फेक्शन हो गया है। शकुंतला घबरा गई, ज्यादा गंभीर तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। रम्या तुरंत बोल पड़ी, इंजेक्शन लगेगा क्या? डॉक्टर हंस पड़ा, शायद थोड़ा सा, लेकिन उससे दर्द खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही रम्या की आंखें फिर से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, उसकी आवाज़ कांप रही थी। शकुंतला ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बस एक छोटा सा होगा, फिर दर्द खत्म। रम्या अभी भी डरी हुई थी, लेकिन दांत का दर्द इतना तेज था कि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। डॉक्टर ने नर्स को कुछ औजार तैयार करने को कहा। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। रम्या अपनी आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठी थी, और उसके छोटे छोटे हाथ अभी भी शकुंतला की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए थे। शकुंतला उसके सिर को सहला रही थी। उसे अपनी बेटी का डर साफ महसूस हो रहा था, और उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, काश ये दर्द जल्दी खत्म हो जाए। डॉक्टर निखिल ने रम्या को कुछ दवाइयाँ लिख दी और कहा कि पहले सूजन थोड़ी कम होने दें, फिर आगे का इलाज करेंगे। शकुंतला ने राहत की सांस ली, कम से कम अभी तुरंत कोई बड़ा इलाज नहीं करना पड़ा। वो रम्या का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की भीड़ थी, लोग आते जाते दिख रहे थे, कोई रिपोर्ट लेकर जा रहा था, कोई डॉक्टर के कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। रम्या अभी भी धीरे धीरे अपना गाल पकड़कर चल रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र कॉरिडोर के दूसरे छोर पर गई। वो एकदम रुक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई।
माँ, उसने धीरे से कहा। शकुंतला ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? रम्या ने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। वो देखो। शकुंतला ने भी उसी दिशा में नजर घुमाई। कुछ दूरी पर एक केबिन के बाहर दो लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी सफेद कोट पहने था, शायद कोई सीनियर डॉक्टर, और उसके सामने खड़ा था विशाल। शकुंतला की आंखें भी हैरान रह गईं। विशाल बड़े ध्यान से उस डॉक्टर से बात कर रहा था। दोनों किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते दिख रहे थे। डॉक्टर के हाथ में कुछ फाइलें थीं और विशाल उन्हें देखता हुआ कुछ समझा रहा था। रम्या ने धीमी आवाज में कहा, माँ, भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी, और वो भी डॉक्टर के साथ। शकुंतला कुछ पल तक चुप खड़ी रही। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि विशाल अचानक इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। विशाल ने अभी तक उन्हें देखा नहीं था। वो पूरी तरह डॉक्टर से बात करने में व्यस्त था। कॉरिडोर की हलचल के बीच माँ और बेटे कुछ दूरी पर खड़ी उसे देख रही थीं। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, विशाल यहाँ और वो भी डॉक्टर के साथ, आखिर क्यों? और इसी सवाल के साथ जैसे वो पल वहीं ठहर गया।